तो रोग है। अरे अरे अरे, बहुत बुरा, लोग देख रहे हैं और हम लोग क्योंकि उसमें इन्वॉल्व एंड ग्रॉस हो गए हैं उसको देखने में ही, कि हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि बस यही सब सत्य है। तो जब तक लाइट नहीं जलेगी पता नहीं चलेगा कि पॉपकॉर्न खाने का टाइम हो गया। तो लाइट कैसे जलती है, ये टॉर्च यहां पर है, ज्ञान की तलवार, इससे ये ज्ञान से रोशनी आती है। और तब हम लोगों को ज्ञान सोच रहा था, मैं ये शरीर हूं, मैं ये आत्मा, मैं ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये सब तो व्यर्थ था। और तब व्यक्ति को ध्यान आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मृत्यु के समय कोई नहीं बचाता है, हम लोग केवल अकेले ऐसे देखते रहते हैं। आप लोगों ने देखा है कभी किसी की मृत्यु होते हुए, तो व्यक्ति ऐसा सोचता है, पता नहीं, यही सोचता होगा, ठीक है अब मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे इनका क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, कितना कष्ट किया था मैंने जीवन में, कम से कम ये लोग मेरे जाने के बाद एक छोटी सी मूर्ति तो बना दे मेरी, और साल में एक बार उस पर हार डाला करें, यही सब सोचेगा ना, और क्या सोचेगा। क्योंकि हम लोग देह के स्तर पर हैं, लेकिन ये ज्ञान जो हमें दिया जा रहा है कि परम सत्य भगवान है, ये सब असत्य है, हम लोग इसको क्यों नहीं ग्रहण कर पाते हैं, ऐसे एक इस असत जग में रह रहे हैं, इस असत दुनिया में रह रहे हैं, और फिर भी हम लोग बार बार इसी में फंसते जाते हैं, इससे बाहर नहीं निकलते। श्री भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत सुंदर भजन में अपनी इस दशा का वर्णन करते हैं। दरअसल ये उनकी दशा नहीं है, ये हम सब की दशा है। ये हम लोग छोटा सा एक भजन में देखेंगे, पेज नंबर 49 पर ये भजन है। भक्ति विनोद ठाकुर समझा रहे हैं कि क्या स्थिति है मानव की। दुर्लभ मानव जन्म लभ्य संसारे, कितना दुर्लभ है हमें मिला है, और हम लोग क्या करते हैं और इसकी क्या गति होने वाली है। तो कृपया इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए, गाइए, और इसके अर्थ को, अर्थ बाद में हम आपको समझाएंगे, उस पर बहुत ध्यान कीजिए। बहुत सुंदर भजन है, इतनी सुंदरता से आगे वर्णन किया है कि शरीर का क्या क्या होता है। तो कृपया इस भजन को दोहराइए, पेज नंबर 49 पर है। भक्त में बता रहे हैं कि दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसार, दुर्लभ क्यों है, क्योंकि इसी मानव जन्म में हम, इसीलिए दुर्लभ मानव जन्म, और इस मानव जन्म को, इस दुर्लभ मानव जन्म को लेकर भी अगर कोई, क्योंकि हम लोग इस समाज में जो धन एकत्रित करते हैं, जो क्या उसको खो देना हमारे लिए कोई नुकसान है, हमारे लिए धन को खोना, परिवार को खोना, प्रतिष्ठा को खोना, समाज को खोना, ये दुख है। और वो कह रहे हैं कही वो कहारे, किसको मैं कहूं अब ये दुख अपना, कोई सुनने वाला नहीं। तीर जो है ये गलितम, गल जाएगा, और तब क्या हम लोग भगवान का भजन कर, ऐसी स्थिति में आकर दुख कही वो कहारे, किसको दुख कहूं अपना, संसार संसार कोरे मीछे गेलो काल, लाभ न है पूरा वो व्यर्थ चला गया, लाभ ना कोई लो किछू, कोई लाभ नहीं हुआ। आप लोग अपने जीवन के अंत में अगर बिना भक्ति किए पहुंच जाए, तो उस व्यक्ति कह सकता है मैंने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाया, तो व्यक्ति कह सकता है मैंने बहुत बड़ा स्कूल बनवाया, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का अंत में कह सकता है मैंने ये लाभ नहीं हुआ, घटिलो जंजाल, और ऊपर से जंजाल बढ़ गया। जंजाल जानते हैं आप लोग, धरण भाषा में बताएं तो परिवार को जंजाल कहते हैं। किसे संसार यही छायाबाजी प्राय, लालचन होते देह पतन होइले की रोबे अमार, देह था तो हमने छायाबाजी की, परिवार बनाया, देह पतन होइले, जब इस देह का पतन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, की रोबे हमार, हमारा क्या रहेगा, देह ही खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म, फिर हमारा क्या रह जाएगा। जो कुछ भी है आपका, आप जो भी अपना मानते हैं, वो सब इस देह से संबंधित है। ये कपड़ा पहनते हम, कहते हैं भोजन खाते हैं हम लोग, घर बनाते हैं हमारा घर है, की रोबे अमार, क्या रहेगा हमारा। फिर उस गाय को पुत्र के पास ले गया और फिर उसको पूछा, रहा चलता रहता है। तो जीवन भर अपना समय केवल व्यक्ति इसी में लगाता है, और पुत्र से तो विशेष आसक्ति होती है, खास करके भारत में। भारत में प्रथा है कि व्यक्ति कहता पुत्र तो होना चाहिए, ये तो मालूम है कि सब नरक में जाने वाले हैं, जो कहते पुत्र होना चाहिए, नहीं तो कोई श्राद्ध करने वाला नहीं होगा, ये हो सुख ना ही दीवे पुत्र परिवार, फिर यही पुत्र गधे के समान परिश्रम किया है। और हर लागी ये तो कोरी ना गुची लो भ्रम, किसके लिए किया है, फायदा हुआ तो आप भ्रम में हैं अभी भी कि ये जो किया वो सही किया कि नहीं किया। दिन जाए मिच्छ काजे निशा निद्रा बाचे, दिन ये बेकार चला जाता है, बेकार के अच्छे कार्य करते हैं, अगर भक्ति नहीं करते हैं तो व्यर्थ के कार्य करते हैं, धन कमाना ये भी व्यर्थ का। आप लोग कहेंगे धन नहीं कमाएंगे तो परिवार कैसे चलाएंगे, तो व्यर्थ कैसे, धन कमाना व्यर्थ नहीं, उद्देश्य अगर सही है तो धन कमाना चाहिए। ये बाहर के लोगों के लिए कह रहे हैं, भक्तों के लिए नहीं। और निशा निद्रा बाश, यानी जो रात आती है तो निद्रा के वश में हो जाते हैं हम लोग, कोई नहीं रहने वाला है यहाँ पर, 12 बजे तक सब रहेंगे, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देगा। तो निशा रात के समय निद्रा बाश ही नहीं, ये सब तो मैं कर रहा था, जी दिन भर काम कर रहा था, रात को सो रहा था परिवार, लेकिन ना ही भावी, मैंने सोचा ही नहीं, क्या नहीं सोचा, मरण निकट आछे, मृत्यु कर देखिए कि हरे कृष्णा, चलो हो गया काम तुम्हारा, पास में बैठे हैं, तो ध्यान ही नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये व्यक्ति सोचता ही नहीं है कि मेरी मृत्यु भी आने वाली, और विशेष करके जब वो युवावस्था में होता है, उस टाइम तो सोचता हो ही नहीं, अभी तो 40 साल बाकी है मेरे पास, इसलिए कभी किसी यहां पे तक पहुंचने वाले को किसने गारंटी दी है। एक बहुत सुंदर उदाहरण हम पढ़ रहे थे, बंबई में ये घटना हुई थी, बालक था नवयुवक, वो ले गए और वो मना कर रहा था कि नहीं वहां जाएंगे नहीं, लेकिन वो कहे नहीं 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 वहां चलो, वो लड़का यंग था 20-21 साल का। और फिर एक दिन बाद भक्तों ने सुना कि जिस रात को वो दांडिया खेलने गया था, दो हम लोग अपने पुत्र परिवार में आसक्त रहने के कारण पीछे मुड़कर देखते ही नहीं है, हमेशा पीछे है मृत्यु, हर क्षण। कोई एक ऐसा आप उदाहरण बताइए कि जहां पर ऐसे ऐसे एज में मृत्यु नहीं होती, कोई ये कह दे कि 1 से 2 साल के बालक की मृत्यु नहीं होती, ये पक्का है, कोई कह सकता है? या 10 से 12 साल के बीच में किसी बालक की मृत्यु नहीं होती, भगवान ने छूट दे रखी है, ऐसा है? बालकों की मृत्यु हो जाती है, और 1 साल तो दूर की बात है, गर्भ में बालकों की मृत्यु हो जाती है, वहां भी गारंटी नहीं है कि वो बच्चा बाहर का सूर्य देखेगा या नहीं देखेगा। इन लोगों के लिए वो बता रहे हैं कि मरण निकट आग्रत हो, देखो, आसक्त मत रहो परिवार, ये हमें इस सत्य से दूर रखता है। हम लोग परम सत्य की बात कर रहे हैं लेकिन असत्य में है, और ये सब असत्य के लक्षण है। इसी कारण से आलो मंद खाई हेरी पारी चिंताहीन, कहते आलो मंद खाई, कभी इच्छा हुई तो बहुत अच्छा खाया, कभी कभी इच्छा हुई तो बहुत कहीं घूमने चला गया, कभी इच्छा हुई तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने, नहीं तो बहुत सादे कपड़े पहने, चिंताहीन, जैसे मन आया मैं वैसे रहा, ना ही भावी ये देहो छाड़ी दे कोनो दिन। लेकिन ये जो शरीर के लिए मैं इतना ध्यान दे रहा हूं, नए नए कपड़े लाना, उसको सजाना, उसको अच्छे से खिलाना, उसको संभालना, इसको एक दिन छोड़, आप उसके ऊपर क्या आसक्त होंगे कि नहीं ये मेरे साथ है, या कोई बैंक आपको आके बोले कि आप हमारे बैंक में अपना सारा पैसा रख दीजिए और हम 1 साल बाद आपका सारा पैसा लेकर भाग जाएंगे, कोई रखेगा? कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे बैंक में पैसा रखेगा? लेकिन आप लोग जानते हैं कि जिस बैंक में हम लोग अभी तक पैसा लगा रहे, ये बैंक भी एक दिन डूबने वाला है कि नहीं? ये शरीर का बैंक डूबने वाला है या नहीं डूबने वाला है? कितना पैसा लगाया, कैसे खर्चा शुरू करते हैं हम लोग इस पर, दाना पिलाना, उसको रखना बहुत संभाल कर, कितना सारा धन हम लोग इस बैंक में लगा रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये बैंक हमें मिला था उसी दिन ये गारंटी दे दी गई थी कि ये नाश होने वाला है। आतस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया, पता है क्या कोई ऐसा व्यक्ति यहां पर है जो कह रहा है मुझे ये नहीं पता था अभी तक कि मेरा शरीर नाश नहीं होगा, नष्ट होने वाला है, आज नहीं तो कल हो जाए, होगा, लेकिन फिर भी सब कुछ इसी शरीर के लिए, इसीलिए भगवान का वर्णन कर रहे हैं, लोग को पुनः दोहराते हैं, श्लोक क्रमांक 12 और 13। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रं परमं भवान् शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं अजं विभुम् सर्वे एव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे पर अर्जुन ने कहा आप परम भगवान परम धाम परम पवित्र परम सत्य हैं आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः हुई थी। तो पिछली बार क्या क्या चर्चा की थी आप लोगों को याद है किसी का? आगे बढ़ने से पहले पीछे क्या किया था, नहीं तो फिर से परम ब्रह्म से शुरू करेंगे। 12वां 18 अध्याय पूरे, और शायद अगर इसी तरह चला लोग 19वां अध्याय भी कर लेंगे यहाँ पर। इस तरह से आप लोग या हम लोग कहना चाहिए भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो शायद ये भी आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा कि इसमें 18 अध्याय हैं। अगर हम कल को कहेंगे कि भगवद गीता के 19वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि आप मेरी ओर मत आइए, तो आप लोग विश्वास कर लेंगे। सही बात है। कितने अध्याय हैं भगवद गीता में, कितने श्लोक हैं? 700 पक्का? 700 हैं कि 725 हैं? आप लोग सोच कर बताइए, 700 हैं या 725? कितने लोगों को पता है यहां पर कि 700 या 725? 700 कितने लोग कहते हैं? 700 श्लोक हैं, बाकी लोग 725 कह रहे हैं कि कह ही नहीं रहे होंगे। 2 वर्ष करीब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता इस भगवद गीता में श्लोक कितने हैं, भगवद गीता में अध्याय कितने हैं, भगवद गीता का विषय क्या है। जैसे सारी रामायण सुनने के बाद कोई व्यक्ति पूछे कि सीता देवी के पति का क्या नाम था, रामायण खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन सीता देवी के पति का नाम ही नहीं पता, तो हम लोगों की भी वो स्थिति है। 10वें अध्याय पर आ गए हैं, लेकिन यही नहीं पता भगवद गीता में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं। अच्छा, भगवद गीता के 5 विषय कौन से हैं, यहां से कोई बता सकते हैं? 5 विषय भगवद गीता के, 4 विषय, 3 विषय, 2 विषय, 1 विषय कोई भगवद गीता का? तो कृपया करके इन जो क्लासेस में आप लोग आते हैं तो कृपया ध्यान से सुनिए। केवल मंगलवार हो गया है, चलो जाएंगे वहां बैठेंगे, थोड़ा देर कुछ कीर्तन भजन होगा, सत्संग होगा, फिर वही किस्सा पुराना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कृपया इसको ध्यान से सुनिए क्या बताया जाता है, कम से कम उसको थोड़ा सा ग्रहण कीजिए, क्योंकि भगवद गीता इसका एक एक शब्द दिव्य वाणी है भगवान की, इसीलिए इसे भगवत गीता कहते हैं, भगवान के द्वारा गाया गया गीत। और इस दिव्य वाणी को अगर हम लोग थोड़ा सा भी अपने जीवन में उतारते हैं या प्रयास भी करते हैं, तो हम लोग भी भगवान की जो स्थिति यहां बताई जा रही है पवित्रम, उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि भगवान से जो भी संबंधित चीजें हैं वो पवित्र हैं, शुद्ध हैं। इसीलिए भक्तों के विषय में बताया जाता है कि शुद्ध भक्त भगवान को अपने हृदय में लेकर चलते हैं, संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो इसलिए जितनी गंभीरता से हम लोग इस ज्ञान को ग्रहण करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, उतना ज्यादा हमको लाभ होगा। हमें नहीं लगता है कि आप में से अधिकतर लोग यहां पर केवल मंगलवार की शाम बिताने के लिए आते हैं, कि मंगलवार को और कुछ करने के लिए नहीं है तो चलो श्री श्री राधा गोकुलानंद में चलते हैं। हम जानते हैं कि आप में से अधिकतर लोग यहां पर भगवद गीता समझने के लिए आते हैं, नहीं तो आप लोग और भी बहुत सारे कार्य कर सकते थे। तो अगर समझने के लिए आए हैं तो हमें बहुत गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए, ये एक कारण होता है हम लोगों का भक्ति में आगे ना बढ़ने का। हम कई सालों से भक्ति करते रहते हैं लेकिन भक्ति मार्ग पर उसी स्थान पर खड़े रहते हैं, और इसका एक ये कारण है कि हम गंभीरता से भक्ति नहीं करते हैं। भक्ति कर रहे हैं, भगवान के भक्तों का संग कर रहे हैं, भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अर्च विग्रह देखते हैं, दर्शन करते हैं या उनकी सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन भक्ति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जिस कारण से हम जहां हैं वहीं रहते हैं, स्थाने स्थिता, उससे बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन भक्ति ये ऐसा मार्ग है जिसमें सदैव आगे बढ़ना चाहिए। भक्ति मार्ग में कभी भी पीछे की ओर नहीं जाना चाहिए, ना ही रुकना चाहिए, क्योंकि हर क्षण भक्ति मार्ग में एक नया रस मिलता है और इस नए रस की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं, और यही प्रयास भक्ति है। भक्ति मार्ग का पालन का अर्थ क्या है? हमने पिछली बार भक्ति समझाई थी कि भक्ति क्या है, क्या तपस्या भक्ति है, किसी को ध्यान है भक्ति क्या बताई थी हमने? प्रेम पूर्वक सेवा, इसे भक्ति कहते हैं। तो सेवा कभी बंद नहीं हो सकती, सेवा करते करते हम रुक नहीं सकते। जब तक भगवान की सेवा करेंगे हमें आनंद मिलेगा, जिस समय भगवान की सेवा करना बंद कर देंगे आनंद भी बंद हो जाएगा, क्योंकि भक्ति आनंद प्रदान करती है, सेवा आनंद प्रदान करती है। इसलिए आप सबसे विनती करते हैं कि कृपया इस चीज को गंभीरता से लीजिए, ध्यान से सुनिए और इसको स्मरण रखने की कोशिश कीजिए। स्मरण नहीं रख सकते हैं तो कम से कम लिखिए, किताब कॉपी लाइए, उस पर पेन से लिखिए, ताकि स्मरण नहीं रहे। कलयुग की बुद्धि है, स्मरण नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम लिख तो सकते हैं, ताकि जब अपना ही लिखा हुआ सामने देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा स्मरण आएगा कृष्ण का। हम लोगों के जीवन का ये उद्देश्य है कृष्ण का स्मरण, और कृष्ण का स्मरण करने के लिए कृष्ण को जानना आवश्यक है। इसीलिए परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, भगवान परब्रह्म हैं। ब्रह्म की व्याख्या हमने पिछले मंगलवार को की थी। ब्रह्म को, ब्रह्म कई चीजों को कहते हैं, आत्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है, इस भौतिक सृष्टि को भी ब्रह्म कहा जाता है और भगवान को भी ब्रह्म कहा जाता है। लेकिन आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? भगवान परम ब्रह्म हैं। परम यानी सबसे ऊंचे, उनसे ऊपर कोई नहीं है। हम लोग सब जीवात्माएं हैं लेकिन हम लोग अपने अपने स्थानों पर हैं, लेकिन परमात्मा या परब्रह्म ये सर्वोच्च स्थिति पर हैं। इस चीज को हम लोगों को समझना चाहिए। आज हम लोग काफी समय से भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं, फिर भी आज ऐसी स्थिति है कि हम लोगों को ये ज्ञान नहीं है। इसका कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा। यहां पर आकर अगर हर मंगलवार को कोई व्यक्ति एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे भगवद गीता के विषय में सुनता है, भगवान कौन है, परम धाम कौन है, परम ब्रह्म कौन है, पवित्रम परमं भवान, फिर भी नहीं समझ पाता है, तो क्या कारण है? आज हम लोग पवित्रम इस विषय पर चर्चा करने वाले थे, तो कारण है अपवित्रम। हम लोग शुद्ध नहीं है, हम लोग पवित्र नहीं है, और ना ही हम लोग प्रयास करते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। इस कारण से हमारे सामने जो प्रत्यक्ष रूप में भगवान का स्वरूप प्रकट होता है उसको देख नहीं पाते, उसको समझ नहीं पाते। जैसे आकाश होता है, आकाश में अगर साफ हो आकाश अर्थात कोई बादल ना हो तो आप आराम से सूर्य को देख सकते हैं, चंद्रमा को देख सकते हैं, आकाश को देख सकते हैं, एकदम साफ। लेकिन जब वर्षा के बादल होते हैं, काले घने बादल, उस समय ना आपको सूर्य दिखाई देता है, ना चंद्रमा रात में दिखाई देता है और ना ही आकाश दिखाई देता है, अर्थात तीनों चीजें छुप जाती हैं। इसी तरह हमारी चेतना है, जब इस पर ये पर्दा पड़ जाता है, अज्ञान का पर्दा, तो ना हमें भगवान दिखाई देते हैं, ना ही उनका परमात्मा स्वरूप दिखाई देता है, और ना ही उनके शरीर से निकलती हुई जो कांति है ब्रह्म ज्योति वो दिखाई देती है, क्योंकि हमारी आंखों पर पर्दा है, अर्थात आंखें हमने बंद कर ली हैं। और हम दोष देते हैं समाज को, दुनिया को, कि ये सब बेकार का है, भगवान कहाँ है, है तो दिखाना चाहिए। अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें तो क्या संसार में अंधकार हो जाएगा? आप लोग यहां बैठे हैं, यहां इतनी रोशनी है, आप लोग जहां बैठे हैं वहां आंख बंद कर लीजिए, तो क्या आपके आंख बंद करने से इस पूरे टेंपल हॉल में, मंदिर के इस कक्ष में क्या अंधेरा हो जाता है? हमें ऐसा लगता है कि अंधेरा हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है, आंखें बंद है, अंधेरा है, लेकिन टेंपल हॉल में अभी भी लाइट है, सब बाकी लोगों को दिख रहा है। तो हमारी स्थिति ऐसी है, अज्ञान का अंधकार है और उसके कारण हम लोग देख नहीं पाते हैं कि हमारे सामने भगवान हैं, भगवान के सुंदर सुंदर रूप हैं, उन नाम के रूप में प्रकट हुए हैं, ये सब हम लोग देख नहीं पाते हैं। इसलिए भगवद गीता को बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता ये पहली सीढ़ी है आध्यात्मिक ज्ञान की, और इसके द्वारा ही हम लोग परम ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। तो अपवित्रम स्थिति, अशुद्ध स्थिति से हमें पवित्रम स्थिति तक जाना है। प्रभुपाद यहां तात्पर्य में लिख रहे हैं कि वेदों में परमेश्वर को परम पवित्र माना गया है, जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गए बिना पाप कर्मों से शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पवित्र मानना वेद सम्मत है, अर्थात जब तक हम लोग भगवान की शरण नहीं जाते हैं, भगवान के दास नहीं बनते हैं, उनको पूर्ण समर्पण नहीं करते हैं, हम लोग शुद्ध नहीं हो सकते हैं, अशुद्ध अवस्था में रहते हैं। और इस अशुद्ध अवस्था में अपने आप को शरीर मानते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए हम लोग कौन हैं। आप ये शरीर नहीं हैं। कोई व्यक्ति अगर ये छोटी सी बात समझ ले तो वो पवित्र स्थिति तक पहुंच सकता है। हमारे अंदर केवल यही अशुद्धता है। हम लोग कहते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब तो है, लेकिन ये सब किस कारण से है, इसका मूल कारण क्या है? अपने आप को शरीर मानना। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर नहीं मानेगा उसके अंदर काम कहां से आएगा, क्रोध कहां से आएगा, लोभ कहां से आएगा, मोह कहां से आएगा? वो तो जानेगा मैं ये शरीर हूं ही नहीं, ना ही इससे संबंधित कोई भी चीज मेरी है। ये ज्ञान हम लोगों को लेना चाहिए। जब तक हम लोग इस ज्ञान तक नहीं पहुंचते हैं, भगवान को समर्पण नहीं करते हैं, तब तक हम लोग इसी जगत में पड़े रहते हैं, नाना योनियों में घूमते रहते हैं, कष्ट सहते रहते हैं, और फिर भी अपने आप को सुखी रखने का प्रयास करते रहते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अर्थात कोई व्यक्ति कोयले की खान में है और कोयले की खान में साफ सुथरे सफेद कपड़े पहनकर गया है, और वो ये सोचता है कि मैं बाहर आऊंगा तो बहुत साफ सुथरा रहूंगा, और कोयले की खान में रहकर, कोयले के बीच में रहकर सारी जगह जहां कालिक है वो अपने आप को बहुत साफ सुथरा रखने का प्रयास करता है। क्या ये संभव है? कोयले की खान में आप जाएंगे तो केवल कपड़े नहीं, ऊपर से नीचे तक आप भी काले होकर आएंगे। ये संभव ही नहीं है कि आप अंदर जाएं और बाहर नहीं साफ सुथरे ना आए। ऐसा एक बार बंबई के लिए बताया जाता था। बंबई में अब तो वैसे बहुत वहां पर प्रगति हो गई है, विकास हो गया है। पहले एक बहुत प्रसिद्ध स्थान था, धारावी कहते थे जिसे। ये एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी थी वहां पर। झोपड़पट्टी समझते हैं आप लोग? झोपड़ियां होती ना, बड़े बड़े शहरों में झोपड़ियां बना लेते हैं लोग, गरीब लोग जिनके पास रहने का स्थान नहीं होता है। तो इस स्थान में धीरे धीरे झोपड़ियां बननी शुरू हुई और ये बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि एशिया की सबसे बड़ी झोपड़ी झोपड़पट्टी कहलाने लगी है, ऐसे बोलते थे उसको। वहां के लिए प्रसिद्ध था कि अगर कोई वहां पर अंदर जाता है तो बाहर साफ सुथरा नहीं आता था, क्योंकि वहां बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, बहुत घर वर एकदम पास पास हैं, कोई घर से कचरा फेंक रहा है, कोई पानी फेंक रहा है, कोई कुछ करता रहता। तो हम लोग ऐसे एक जगत में हैं, कोयले की खान में, या कहना चाहिए धारावी में हैं, और हम सोचते हैं कि हम बहुत सुखी रह सकते हैं, स्वच्छ रहेंगे, जो संभव नहीं है। इस जगत में केवल कष्ट है, और इस चीज को हमें समझना चाहिए, भगवान को समर्पण करना चाहिए, तब हम लोग स्वतंत्र हो सकते हैं। एक छोटा सा बालक कब अपने आप को फ्री, अपने मुक्त मानता है, या कब अपने आप को स्वतंत्र मानता है? छोटा सा बालक है वो तब मानता है जब वो जानता है कि मेरे पिताजी मेरे पीछे खड़े हैं मुझे बचाने के लिए, तब वो कुछ भी करता है। लेकिन अगर उसको पता है मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, तब वो बहुत घबराता है, भयभीत होता है। हम लोग सब इस जगत में भयभीत रहते हैं, भय है हमें। किस चीज का भय है? किसी को अपनी संपत्ति का भय है, किसी को अपने परिवार वालों का भय है, किसी को और कोई भय है, लेकिन भय है। क्यों भयभीत है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पीछे जो हमारे पिता है वो नहीं है, हमें दिख नहीं रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को समर्पण करता है वो उस बालक के समान हो जाता है कि जब वो घूम कर देखता है कि मेरे पिता पीछे खड़े हैं, तो उसे चिंता नहीं रहती है कि मैं जो भी करूंगा वो पिताजी बचा लेंगे, मुझे चिंता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें भगवान को समर्पण करना है, और ये समर्पण ही केवल हमें स्वतंत्र कर सकता है, मुक्ति दिला सकता है। आध्यात्मिक जगत के नियम उल्टे होते हैं। इस जगत में स्वतंत्रता का अर्थ है कुछ चीजों से मुक्त हो जाना, अपने आप का जो अस्तित्व है या अपने आप की जो स्वतंत्रता है उसको बनाए रखना, किसी के गुलाम ना बनना। ये इस जगत की स्वतंत्रता है, आध्यात्मिक जगत की नहीं है। आध्यात्मिक जगत की स्वतंत्रता है समर्पण कर देना, दास बन जाना। इस जगत में आप किसी को बोलिए कि आप दास बन जाओ तो आप खुश रहोगे, तो कोई नहीं मानेगा। दास बन के कोई खुश हो सकता है? आध्यात्मिक जगत में आप कहिए, आध्यात्मिक जगत में कहने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े आचार्य प्रार्थना करते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रार्थना करते हैं, वो बताते हैं कि मैं तो केवल गोपी भरत उपद कमले दास दास दासानुदास, मैं तो भगवान कृष्ण जो कि गोपियों के स्वामी हैं उनके दासों के दासों का दास हूं। अर्थात भक्त गर्व महसूस करता है अपने आप को दास कहलाने में, किसी की सेवा करने में। लेकिन इस भौतिक जगत में लोग सेवा करने में या दास कहलाने में बहुत कष्ट अनुभव करते हैं। आप किसी कंपनी के बड़े मैनेजर को बोलिए, बैंक मैनेजर है या किसी कंपनी का मैनेजर है, उसको कहिए आप नौकर हैं, तो बहुत क्रोध आ जाएगा। लेकिन असली स्थिति क्या है? नौकर है, किसी की नौकरी कर रहा है, जो भी नौकरी करता है वो नौकर है। लेकिन आप कहिए उनको तो वो कहेंगे कि श्री प्रभुपाद एक लेक्चर में बता रहे थे कि लोग बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे वो उदाहरण दे रहे थे एक टेनरी एक्सपर्ट, प्रभुपाद कहते हैं कि जमाने में लोग लिख लेते अपने नाम के आगे टेनरी एक्सपर्ट। टेनरी एक्सपर्ट मतलब क्या है? चमड़े का काम करने वाला, चमड़े के काम करने में दक्ष। मतलब प्रभुपाद समझाते हैं है तो मोची, मोची जानते हैं आप लोग, हाँ क्या बोलते हैं, हाँ वो जूता उता बनाता है जो मोची, वही चमड़े का काम करता है ना। लेकिन वो लगाते हैं टैनरी एक्सपर्ट, बहुत बड़ा बड़ा एसी ऑफिस होता है उनका, एयर कंडीशन ऑफिस वगैरह। मोची बेचारा किसी पेड़ के नीचे बैठकर जूते सिलता है, लेकिन वो टैनरी एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो केवल बड़े बड़े नाम लगा देने से व्यक्ति में गुण नहीं आ जाते। प्रभुपाद भगवद गीता में बताते हैं कि महात्मा केवल शब्द लगा देने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। महात्मा कौन है ये भगवान समझाते हैं भगवद गीता में। वो व्यक्ति जिसने भगवान की दैवी शक्ति का आश्रय लिया है। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, जिसने आश्रय लिया है दैवी प्रकृति का, वो महात्मा है। लेकिन आजकल तो रबर स्टैंप लगा दिया नाम के आगे और महात्मा हो गए, भगवान भी हो गए। आजकल तो लोग अपने नाम के आगे भगवान लगाते हैं और वो भगवान हो जाते हैं। लेकिन ये सब शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। हम लोगों को एक मार्ग का पालन करना है जिससे हम लोग इस बात को समझ सके कि भगवान कौन है, परम पवित्र है, परम धाम है, और साथ ही साथ परमम भवान, आप परम सत्य हैं। इस जगत में हम लोग जो भी चीजें देख रहे हैं ये असत है, सत्य नहीं है। जैसे कि कोई सिनेमा का उदाहरण हमने कई बार दिया है कि आप सिनेमा में जाते हैं और पर्दे पर कुछ कुछ चलता रहता है, हीरो नाचता रहता है, हीरोइन रोती रहती है, विलेन चिल्लाता रहता है, कुछ ना कुछ चलता है, तो हम लोग देखते हैं और उसको देखने में इतने मग्न हो जाते हैं कि हमें लगता है यही सत्य चल रहा है और हम लोग बहुत ध्यान से देखते हैं अब क्या होगा, आगे क्या होगा, उसको मार देगा क्या, उसका क्या होगा, वो बेचारी कहाँ जाएगी, पता नहीं बहुत सारी बातें। हाँ, और जैसे ही लाइट जलती है तो पता चलता है हाँ पॉपकॉर्न खाने का टाइम हो गया है अभी, तो ध्यान नहीं रहता वो सब। लेकिन जब तक देखते रहते हैं बहुत ध्यान रहता है अब क्या होगा, क्योंकि चारों तरफ अंधकार होता है और केवल वहीं पर ध्यान होता है। इसी तरह इस भौतिक जगत में हमारे चारों ओर अंधकार है, अज्ञान का अंधकार। हम एक थिएटर में बैठे हैं और इस थिएटर में चारों ओर अंधकार है, अज्ञान ही अज्ञान है, और माया देवी प्रोजेक्टर से हमें एक चलचित्र दिखा रही है, पिक्चर दिखा रही है कि देखो तुम ये शरीर हो, तुम्हारा इतना सुंदर शरीर है, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी माता हैं, ये तुम्हारी पत्नी है, और हम लोग चलचित्र देख रहे हैं, बहुत अच्छा, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, बहुत चिंता में हमारा भविष्य क्या होगा। तो माया देवी दिखाती रहती है, देखो देखो अब तुम बूढ़े हो रहे हो, अब तुम जवान हो गए हो, अब तुम छोटे से बालक हो, और हम लोग देखते रहते हैं हाँ हाँ अरे अब क्या होगा, देखो अब तुम्हारी शादी हो गई है, पर्दे पे चल रहा है, व्यक्ति इधर बैठा है, समझिए एक पिक्चर चल रही हो, आपके जीवन पर पिक्चर बनी है। वैसे यहाँ पर कोई इतना प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन पर पिक्चर बनेगी, समझिए आपके जीवन पर पिक्चर बनी है और आप ही को दिखाई जा रही है, आप यहाँ बैठे हैं और आपको दिखाया जा रहा है ये आपका बचपन है, ये आप बड़े हो गए, अब आपका विवाह